नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए 1,39,750 करोड़ रुपए की कर धनराशि जारी की। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के बाद मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी किए जाने पर किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की। कुल 9 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को मानसून से पहले बाढ़ की रोकथाम संबंधी सभी तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए 1,39,750 करोड़ रुपए की कर धनराशि जारी की है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये राशि राज्य सरकारों को विकास और पूंजी संबंधी व्यय में तेजी लाने में मदद करेगी। 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस किस्त के साथ ही केंद्र ने 10 जून तक राज्यों को 2,79,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले को एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। परीक्षा में कदाचार और धोखाधड़ी की शीघ्र और गहन जांच करने के लिए छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षा के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले शैक्षणिक वर्ष से साल में छात्रों को 2 बार प्रवेश देने की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1 वर्ष में 1 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि इससे उन छात्रों को अधिक फायदा मिलेगा जिनके बोर्ड परिणाम की घोषणा में देरी हो जाती है या जो स्वास्थ्य समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से प्रवेश लेने से चूक जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 का और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। हिसार से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह पानू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि नए आपराधिक कानूनों में न्याय व निष्पक्षता बनाए रखते हुए समकालीन समाज की जटिलताओं का हल किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में हुए बदलावों को लेकर अधिवक्ता नरेंद्र सिंह पानू ने बताया,
जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इंट्रोड्यूस किया है और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई विक्टिम अगर केस विड्रॉ करता है जिसमें सजा का प्रोविजन 7 साल या ज्यादा है तो पुलिस विक्टिम से पूछेगी कि केस वापस क्यों ले रहे हो, जिससे कन्विक्शन का रेशो बढ़ेगा और लोग झूठे केस भी करेंगे और जल्दी से उनमें सेटलमेंट भी नहीं करेंगे और मजिस्ट्रेट को भी इसके अंदर पावर मिलेगी, कोग्निजेंस ले सकते।
श्री पानू ने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। ये मौखिक साक्ष्य की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति की भी अनुमति देता है और दूरस्थ गवाही को सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून देश के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने में मददगार साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिस पर हरियाणा के किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। जींद के किसान कर्मवीर ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
मैं एक किसान परिवार से हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पीएम किसान निधि की किस्त जारी की है, इससे किसानों का बहुत ही भला होगा और उम्मीद है कि आगे भी प्रधानमंत्री जी इस तरह से किसानों के हक में फैसले लेते रहेंगे।
इस किस्त में देश भर के किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रूपए डाले जायेंगे, जिससे कुल 9,30,00,000 किसान लाभान्वित होंगे। जींद जिले में ही एक अन्य किसान जयवीर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने पर कहा कि श्री मोदी ने पहले ही दिन किसान हितैषी कदम उठाया है।
मैं किसान परिवार से संबंधित हूं और जो प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद जो किसानों के लिए पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जारी की थी, उसके तहत आते ही अपनी पहली कलम से किसानों की जो राशि है वह डालने का काम किया है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे, जिससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा और उन्हें खेती करने में भी यह पैसा काफी लाभदायक साबित होगा।
अन्य किसानों का भी कहना है कि इस योजना के तहत हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए उन्हें खाद व बीज की खरीद में काम आते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज बाढ़ की रोकथाम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक की। बैठक में सिंचाई व जल संसाधन मंत्री डॉ. अभय सिंह यादव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मॉनसून से पहले 30 जून तक बाढ़ की रोकथाम संबंधी सभी तैयारियां मुकम्मल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी रजबाहों व नालों के तटबंध मजबूत करने के लिए मिट्टी भराई का काम तत्काल शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर गत वर्ष की तरह बाढ़ के हालात बने तो दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले वर्ष बाढ़ से अम्बाला और कुरूक्षेत्र जिले काफी प्रभावित हुए थे। हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत के लिए 1,20,00,000 रूपये से अधिक राशि स्वीकृत की है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने आज इन चौपालों की मरम्मत का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौपालें महत्वपूर्ण सामुदायिक स्थान हैं, जिनका उपयोग ग्रामीण बैठकें व विवाह समारोह आयोजित करने और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, इसलिए इनकी मरम्मत समयबद्ध तरीके से होना जरूरी है। हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने आज से राज्य में नशीली दवाओं के दुरूपयोग के खिलाफ 2 सप्ताह का नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। जिला पुलिस इकाइयों के साथ मिलकर शुरू किए गए इस जागरूकता अभियान में नशों के खिलाफ शिक्षित करने और इस कार्यक्रम में लगे लोगों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल की गई हैं। हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख ओपी सिंह ने बताया कि अभियान के केंद्र में डिजिटल ई प्रतिज्ञा को रखा गया है, जो नागरिकों को नशा मुक्त जीवन शैली के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों को जून महीने के लिए 1,39,750 करोड़ रूपये की कर धन राशि जारी की। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट के बाद मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।